जय मां। श्री अरविंद के सत्य दर्शन की एक विशेषता ये है कि वो एक बहुत ही समग्र विस्तार की भूमि पर हम लोगों को ले जाते हैं। आमतौर पर जो आध्यात्मिक दर्शन रहा है उसमें कहीं ना कहीं विभाजन रहा है कि ये आध्यात्मिक है और ये आध्यात्मिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है, ये डिवाइन है, ये अनडिवाइन है। किंतु जब हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं और देखते हैं तो बहुत मन के अंदर एक आशा भर जाती है कि ये सब हमारी यात्रा के पड़ाव हैं। तो उसी यात्रा का वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सोल और नेचर के बीच के संबंध की, और यहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये इस संसार को हम एक बहुत बड़ी पाठशाला के रूप में देख सकते हैं, और इस पाठशाला की जो हेडमिस्ट्रेस है वो नेचर है, प्रकृति है, और उनके अनेकों शिक्षक हैं इसमें। यहाँ तक कि बड़े भयानक भी हैं, जैसे हर एक स्कूल में एक होता है जिसे सब डरते थे, तो वो भी है, और अच्छे शिक्षक भी हैं। लेकिन ये सब वास्तव में, हमको कितना भी इनसे परेशानी हो रही हो, वास्तव में वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो टॉप करे। तो प्रकृति जो खेल खेल रही है, जो जिससे हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, तो वास्तव में क्यों कर रही है? ताकि हम उसके भी परे, उसको बाद में, जैसे गुरुकुल में बच्चे आते थे तो उनको भूल जाना पड़ता था कि कोई घर में है। माताजी भी ये पहले पसंद करती थी, मतलब पसंद इज ए वे ऑफ सेइंग कि शी प्रेफर्ड कि पेरेंट्स ना रहें, क्योंकि वो माता पिता, वो कहती हैं बहुत सारा एटविज्म जो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर डाल देते हैं, जैसे एम्बिशन डाल देते हैं कि नहीं, कितना भी सोच के लाते हैं कि ये बच्चों का यहाँ एग्ज़ाम नहीं है, वो नहीं है, अंत में इसी पर आ जाते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको एग्ज़ाम में। तो ये चूँकि वो उनकी आदतें, पेरेंट्स की आदतें बिगड़ी होती हैं, बच्चे तो बेचारे क्लीन स्लेट होते हैं, तो वो देखते हैं जैसे उनका सिस्टम, जो तौर तरीका, वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली एकदम स्पॉन्ज की तरह सोख लेते हैं। फिर उन्हीं को पेरेंट्स बाद में कहते कि तुम ऐसे हो वैसे हो। तो प्रेफर वो ये करती थी कि बच्चे यहाँ पर आए, माता पिता थोड़ा दूर ही रहें। और ये भी सच है कि वो इतना अधिक माँ में प्रेम होता था उनका कि वो जाना भी नहीं चाहते थे, ये पहले की बात है। तो हम लोग भी, ये एक पाठशाला है जहाँ हमारे पेरेंट्स जो डिवाइन पेरेंट्स हैं, वो अभी हम उनसे नहीं मिल सकते एक एवरेज व्यक्ति की, लेकिन हैं उन्हीं की संतान। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे वो हमारे अभिभावक की तरह, हमारे पेरेंट्स की तरह वही हैं। कोई भी आपको समस्या होगी उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, वो जैसे सिखा रहे हैं आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ये जो था ट्रेनिंग का प्रोसेस, तो वो हमारी चलती है। और इस ट्रेनिंग के तीन पड़ाव हैं, जैसे कहते हैं ना, मिडिल स्कूल, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, मालूम नहीं, भूल गया हूँ मैं सारे क्या क्या होते थे, पर तीन पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है जब वो केवल हमको परिचय कराते हैं, प्रकृति हमको परिचित कराती है अपनी शक्तियों से, बड़े माइल्ड फॉर्म में। एक उदाहरण ले ले, अग्नि। तो प्रकृति कैसे परिचित कराएगी? आपने आग को देखा, प्रकृति का पढ़ाने का तरीका सच में अद्भुत है। तो वो आपको आकर्षित हुए, तो कहाँ आकर्षित करेगी? किसी भी चीज़ के प्रति, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में जानना है, हर चीज़ के अंदर अल्टीमेटली एक सत्य है। तो आपने देखा और छुए तो आपको जोर से आग लगी। अब पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके अंदर भय आएगा। फिर थोड़े समय बाद वही चीज़ जो डरा रही है फिर आकर्षित करेगी, ये प्रकृति का खेल है, देखिए। फिर आप धीरे धीरे समझोगे इसको, वैसे तो इसमें लाइट का काम करती है, लेकिन इसके पास जाओगे तो ये जल जाओगे। तो आपने ये लर्निंग हो गई आपकी। अब लेकिन प्रकाश ही केवल देगी या इसकी और भी कोई प्रोसेस है? तो आप डिस्कवर करते हो कि ये चीज़ों को पका भी सकती है, चीज़ों को ये इसके अंदर शुद्ध कर सकती है। धीरे धीरे अग्नि के अनेकों रूपों दिखा दी जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अंत में वो क्या दर्शन कराएगी? वैश्वानर। ये अग्नि तो एक केवल एक रूप है उस विशाल अग्नि का जो सारी सृष्टि को उठा रही है, सारी सृष्टि की जात वेदस है। तो देखिए प्रकृति ऐसे कराती है। तो उसकी इनिशियल स्कूलिंग वो अपनी एनर्जी इसका केवल परिचय दे रही है। कुछ समय के बाद वो उनका दोनों रूप दिखाएगी, सुंदर रूप और भयानक रूप, दोनों प्रकृति के अंदर है। और फिर धीरे धीरे ले किधर जा रही है, आप मास्टर हो गए उसकी तरफ। अब समस्या ये कि एक जीवन की यात्रा नहीं है, इसलिए हम लोगों को परेशानी होती है। कभी कभी एक जीवन, दो जीवन, तीन जीवन केवल उसके उग्र रूप को समझने में लग जाते हैं। बाद में धीरे धीरे यही हुआ होगा ना मनुष्यों का, जब उन्होंने पहले देखा मैस्टोडॉन, बड़े बड़े हाथी, और ये इनसे हम क्या करें, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसने उन्हीं हाथियों के ऊपर चढ़ना सीखा, उनको युद्ध में ले गया, उनसे अपने काम करवाने लगा। तो ये प्रोसेस है। हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम केवल अपने छोटे से ईगो में बैठे हुए, अरे हमारा क्या हुआ, हमारा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये मापदंड से हम ना जीवन को, ना प्रकृति को, ना संसार को कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारा भगवान का वो क्राइटेरिया ही नहीं है, तरीका नहीं है। समस्या ये है कि उनके सामने कई जन्मों की यात्रा है और हमारे सामने केवल एक जन्म हमको दिखाई देता है, हमारी समस्या ये है। तो यहाँ उसी का हम वर्णन पढ़ रहे हैं, पहले श्री अरविंद ने। और देखिए, ऐसा लगता है कि अरे हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ने से लगता है कि ये तो खेल कुछ और लेवल पे हो रहा है, वो तो प्रकृति और सोल की बीच में ये चल रहा है सारा खेल, और हमको ये समझ नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि हम बहुत मनुष्य, मान एक जगह कहती हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक समस्या, वैसे बहुत समस्याएं हैं मनुष्यों की, पर एक समस्या है कि वी टेक अवर सेल्स टू सीरियसली। तो हर चीज में हम खुद ही सब कुछ, मतलब अंत में होता है कि भगवान के लिए कुछ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो ये अंत में आपको, ये भगवान ले जाएंगे वहां पर, जहां आप अंत में यही कहोगे हो ये सोई जो राम रची रखा। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे बड़ा सुंदर, और देखिए यहाँ कितना अद्भुत दृश्य से हम लोग रुके थे, जहां माँ काली का ऐसा नृत्य हो रहा है, वाइल्ड डांस, वहां देवता भी भयभीत हैं कि ये तो सभी नष्ट कर देंगी, ये तो आई थी असुर को नष्ट करने, ये तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे, सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, वाइल्ड एंड रेकलेस डांस ऑफ काली। तो उसको थमाने के लिए, थामने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलाइज करने के लिए शिव स्वयं लेट गए इनर्ट, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। कभी भी कोई, खासकर नारी गुस्सा होती है, कुछ मत बोलिए नहीं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को। तो वो शिव नीचे लेट जाते हैं, नहीं देखिए हमारे शास्त्रों में हर चीज का एक उपाय बताया हुआ है। अब वो लेट जाते हैं, वो डांस करें, लेकिन यही जो है माँ काली जो इस मूड में है, वही माँ काली कुछ क्षणों के बाद वो शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी बनकर है, वही पार्वती माँ कुछ समय के बाद जब शिव ध्यानस्थ हैं तो उनकी पूजा उपासना में लगी है कि इनके हृदय में चल क्या रहा है, क्या है इनके हृदय में। तो ये सारे मूड्स और मोड्स हैं नेचर के, और इसीलिए भयभीत होने वाला व्यक्ति स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, मतलब पढ़ेगा विली निली, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आप अपने टीचर को नहीं बदल सकते हैं, एक ऐसा स्कूल है। तो यहाँ पर उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फिर भी कोई स्कूल से भागना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में इसके अंदर भगवान साथ में हैं, उनकी जो डिलाइट है ना, इसीलिए प्रकृति की हर चीज में, कठिनाई में, उसका एंड पॉइंट डिलाइट होता है, मास्टरी का डिलाइट या रिलीफ का डिलाइट, कई तरह से आपको कहीं ना कहीं आनंद एक दरवाजा खोल देता है। बड़े कष्ट से कोई गुजर रहा है, फिर उसका शरीर पूरा हो गया, उसके बाद बड़ा ये पैराडॉक्सिकल है, आप अटैच थे, सब थे, लेकिन अंदर में एक जॉय होता है, एक रिलीज का जॉय, हर प्रकार के चीजों से ले जाती है प्रकृति। अब यहां पर आगे पेज नंबर 63 द सीक्रेट नॉलेज, हिज वर्क्स हिज थॉट्स हैव बीन डिवाइज्ड बाय हर। हमको लगता है हम सोच रहे हैं, फ्री थिंकिंग, प्रकृति की मशीनरी काम कर रही है, अभी हम तैयार नहीं हैं उस उच्चतम विचारों के लिए, तो प्रकृति क्या कर रही है, वो निम्न थॉट्स आ रहे हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। प्रकृति का तरीका ये है, बहुत सिंपल है, आपके अंदर वो ऐसे विचार आ रहे हैं जो डार्क हैं, उसमें आप बह रहे हो, और चूंकि प्रकृति एक वास्ट कॉन्शियसनेस पर रहती है, माँ बताती हैं कि वो क्यों, जब माँ ये नया खेल लाई अब न्यू क्रिएशन का, तो प्रकृति ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो माँ उसके साथ खेलने लगी, खेलते खेलते उसको लगा इसमें तो जॉय काफ़ी है, तो माँ कहती वो क्यों अस्वीकार कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरा पपेट है, हम लोग प्रकृति की विशालता के लिए पपेट हैं। एक सुनामी आई 2 लाख लोग चले गए, प्रकृति के हिसाब से अच्छा कोई बात नहीं, इनको मैं नया शरीर दे करके भेज दूंगी। प्रकृति के ग्रैंड मूवमेंट्स होते हैं, माँ बताती तुम लोग अगर उस मूवमेंट को देखोगे तो मनुष्य एक चींटी के समान लगेंगे। उस दृष्टि से हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, गुरु नानक जी की कहानी है, कहानी ऐसे कि एक बार वो जा रहे हैं और उनको पकड़ लेते हैं कुछ मुगल उसके लोग और फिर जेल में डाल देते हैं, और उनके साथ जो है बंदा वो कहता है कि ये आपके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, कहते कुछ कभी मन के अंदर ये डाउट मत लाना भगवान के प्रति, अभी तुम सो जाओ कल सुबह उत्तर दूंगा। तो सो जाते हैं, अब उसको नींद कहाँ है, उसको लग रहा है ये क्या है, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो रियलाइज सेंट हैं ये, सबका कल्याण करने में लगे हैं। फिर सुबह उठते हैं, वो तो आराम से सो के उठते हैं, कहते हैं नींद आई नहीं मुझे तो उत्तर चाहिए, कहते हैं तुम देखो पहले नीचे तुम्हारे कुछ दिख रहा है, कहते हैं हाँ बहुत सारी चिट्ठियाँ मरी हुई हैं, कहते तुमने रात को सोचा कितनी चिट्ठियाँ मर रही हैं तुम्हारे शरीर के नीचे, ये तो नहीं सोचा, कहते हैं इतनी ही विशाल चेतना वो जब चलती है हम उसके सामने एक तिनके के समान है। अब ये एक सत्य है, उसका एक दूसरा सत्य भी है कि हम ईश्वर हैं, लेकिन पहले हमको ये रियलाइज करना है, जो विनम्र नहीं है उसके जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता। फर्स्ट लेसन इज टू बी लाइक ए ग्रास, ह्यूमिलिटी। अगर किसी को थोड़ा भी एरोगेंस है मैं जानता हूं मैं करता हूं मैं कर लूंगा, तो बार बार उसको वो मेरा कॉइन किया वर्ड है धोबी पछाड़ योग। भगवान कहते हैं अच्छा तू करेगा ओके, भगवान नहीं कहते प्रकृति, भगवान तो बहुत दयालु है वो देख रहे बेचारे, तो प्रकृति कहती कम तू करेगा ना, हाँ चल मैंने विजय प्राप्त की है अपने ऊपर, मैं आत्मजयी हो गया हूं। कुछ लोगों के अंदर बड़ा ये भी मैं जितेंद्रिय हूं जित क्रोधी हूं, अच्छा ओके वेट, और आप ऐसा पटकते हो कि जमीन पर रोल कर रहे हो कि क्या हो गया, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप प्रकृति के। तो विनम्रता माने इस जगह का है, होस्टाइल और एडवर्स फोर्सेस से बचने का एक तरीका ये है विनम्रता, और प्रकृति आपको डेवलप कराएगी, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन है ज्ञान का, फर्स्ट स्टेप नहीं है बिना विनम्रता के। जो ये सोच रहे हैं कि हम जानते हैं क्योंकि हम डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं डिग्री हैं या हमने शास्त्र पढ़े हैं या हम भाषण दे रहे हैं शास्त्रों पर, हमें बहुत लोग मानते हैं, हमारा बड़ा मान है, हमको ये अवार्ड मिला है, वन इज नॉट रेडी इवन टू एंटर द पाथ, वो तैयार भी नहीं है पथ पर, जो ये समझ रहे हैं कि मुझे ज्ञान है कि हम बड़े मठाधीश हैं मंडली, नन ऑफ दिस क्वालिफाइज। तो फर्स्ट स्टेप इज विनम्रता। His being is a mirror vast of hers. धीरे धीरे प्रकृति अपने सारे moods और व्यक्ति क्या करने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब प्रकृति के मूड देखिए, अभी सुहाना सफर है, मौसम हंसी, अगले क्षण सब बदल ना जाए कहीं, अब वो ऐसा बदलता है कि वो भयानक आंधी तूफान। तो हम लोगों के अंदर भी यही होता है, His being is a mirror vast of hers. कभी इसलिए लोगों को कभी एक क्षण के उस पर जज नहीं करना चाहिए, करना तो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेचारा क्या कर रहा है, प्रकृति के मूड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इन मूड्स का एक डिवाइन इक्विवेलेंट भी है, ये नहीं कि अपने आप आ रहे हैं, दिस इज डिवाइन। शिव जब डिस्ट्रॉय करते हैं वर्ल्ड्स को, विलाप करते हैं, सारी सृष्टि दुख से भर जाती है, वो देवता का विलाप है, देवता का जब डिस्ट्रॉय करते हैं। शेरविन कहते हैं कि व्हाट शिवा डज कॉन्शियसली द असुरा डज अनकॉन्शियसली, ये उसकी प्रॉब्लम है, फिर भी वो प्रिय हैं शिव को, विनाश तो ये वही करते हैं ना, उनका काम ही यही है, पर ये भी एक मूड है प्रकृति का। और फिर अगर ऐसे देखने लगो तो एकदम अलग दृष्टि से कि जय माँ जय काली माँ, आप सुनामी के रूप में आ रहे हो, एक्टिव इंस्पायर्ड बाई हर ही स्पीक्स एंड मूव्स, सारे जो प्रकृति के अंदर आप देखेंगे तो शिक्षा मिल जाएगी, तो वही हमारे अंदर वाणी में हमारी कृत्यों में। His deeds obey her heart's unspoken demands. तो अपनी प्रतिकृतियां एक से एक बना करके और कर क्या रही है, भगवान को बुला रही है उसके अंदर. उसके अंदर भी एक देवत्व. तो देखिए जब भीमसेन जाके दुशासन की भुजा उखाड़ते हैं और छाती के लहू पीते हैं, अगर आप इसको मॉडर्न स्टैंडर्ड से देखोगे आप कहोगे ये क्या है. प्रकृति के अंदर तो इससे कहीं वर्स चीजें होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो देवत्व के लेवल तक चला गया है. ही इज लाइक ए गॉड. तो ये प्रकृति के. हिज डीड्स ओबे हर हार्ट्स अनस्पोकन डिमांड्स. पैसिव ही बेयर्स द इम्पैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज इफ हर टचेस शेपिंग हिज सोल एंड लाइफ. ये भी प्रकृति का एक तरीका है. आपको सहन शक्ति, ये भी एक पहली पहली स्टेजेस होती हैं. एक विनम्रता, सहन शक्ति, इसीलिए समता का अभ्यास. तो सारे इम्पैक्ट्स, आप कह रहे भगवान अब तो मैं आपकी ओर मुड़ गया हूँ. नहीं नहीं, तभी तो अब तो मुड़ गया है तो ज़्यादा तुझे तैयार होना है ना. जब तक नहीं मुड़ा था प्रकृति के हैंड्स तुझे थोड़ा, अब आप हायर क्लास में जा रहे हो तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो और टफ होता है. माइक जे कहती हैं द हायर यू असेंड, द हायर यू वांट टू गो, देर इज ए एग्जामिनेशन बिफोर एवरी स्पिरिचुअल डिग्री, बट मोस्ट आर कीन ओनली ऑन ब्राइबिंग द एग्जामिनर. भगवान हमारे साथ, प्रसाद हम चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, आपने प्रसाद चढ़ा दिया बजरंग बली को, आप बाहर आए हनुमान जी की कथा. तो डरता है, कह रहा है कि मेरा शिष्य है, पहले तो मैं तुझे डर भगाऊंगा तेरे अंदर से. तो ये भगवान का खेल देखिए ऐसे चलता है, कैसे हमारे जीवन को शेप कर रहे हैं. अब ये जब हम सोचते हैं तो देखिए चीजें कितनी सरल हो जाती हैं कि भाई भगवान हमको शेप कर रहे हैं, तो इजी होता है ना. राधन मेरे कर्म, तुम्हारे कर्म, किसी और के कर्म, ना जाने किसका भ्रम, ये सब चीजों से मन लगता है पता नहीं कौन से कर्म. फिर ये जब आप देखते हैं कि शेपिंग गॉड्स ट्रेमेंडस टच, तैयार किया जा रहा है हमको एक दिन अर्जुन बनने के लिए एक दिन, तब लगता है ओके दिस वी कैन गो थ्रू. His journey through the days is her sun march. He runs upon her roads. Hers is the course. हम सोच रहे हैं कि हमने चुनाव किया, कुछ नहीं. आपको जो अनुभव देना है ये बिफोर वन टर्न्स टुवर्ड द डिवाइन. लेकिन प्रकृति का खेल एक बड़ा लंबा चलता है और उसमें भी रूपांतरण की प्रोसेस में भी वो एक आएगी, क्योंकि उसी का रूपांतरण होना है. तो हमको लग रहा है हमने चुना, लेकिन प्रकृति ने आपसे चुनवाया उस समय और आपको वो जीवन का अनुभव लेना था. तो आपको ये जो शी इज डूइंग, एक जगह श्री अरविंद की लाइन है, नेचर मैन इज ए डायनामो फॉर गॉड्स वर्क, नेचर डज मोस्ट इन हिम, गॉड द हाई रेस्ट, ओनली हिज सोल्स कंसेंट इज हिज ओन. जब तैयार हो जाता है इन सब से गुजर के, तब प्रकृति कहती है परा प्रकृति माँ अदिति आपके हाथों हम, मैं सौंप रही हूं. तो ये स्कूल से बच के नहीं जा सकते. ए विटनेस एंड स्टूडेंट ऑफ हर जॉय एंड डोल. अब वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन, मतलब नेक्स्ट लेवल कब आता है, मिडिल क्लास का, जब वो समझना चाहता है कि ये हो क्या रहा है मेरे लाइफ में. ये आती है ना सबके साथ, दो चार बार अच्छे से आप रगड़े जाते हो फिर आप कहते हो ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न करते हो. बुद्धि जैसे लोग तो दूसरों को देख के प्रश्न करने लगते हैं कि अरे ये क्यों है, पर आम व्यक्ति ऐसा नहीं करता है. जब उसके पांव के ऊपर कोई स्टेप करता है, अरे संसार में पीड़ा क्यों है, तो आप पहले व्यक्ति हो. तो ये जो है नेक्स्ट, वो उसको उकसाती है कि मुझे समझ. अब देखिए वहां से एक ज्ञान का नेक्स्ट स्टेप आया, पहले विनम्रता अच्छी से ठोक पिटाई, अब आप समझने की कौन है जो मुझे इस बुरी तरह पीट रहा है. ए पार्टनर इन हर ईविल एंड हर गुड. देखिए जॉय एंड डोल, पहले वो क्या करेगी, खुशी दे देगी आपको. आपको लगा, अलग अलग थ्योरीज हैं जो भी हैं, आह मजा आ गया. वही व्यक्ति जिसने आपको खुशी दी थी लिख के रख लो, पीड़ा का कारण बनेगा. वही वस्तु जो आपको खुशी दे रही थी, वो कंबल वाली कहानी ना कि अब कंबल नहीं छोड़ता मुझे। हाँ कितना अच्छा घर बन गया आप बड़े, अब आपसे वो घर नहीं छूटेगा। आप बोलोगे मैं जाना चाहती हूँ, जाना नहीं छूट रहा। तो वही ये दोनों लेसन होंगे, जॉय एंड डोल। पहले वो देती, डोल क्या है वीक में, मुझे चाहिए आप भगवान से, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा सुंदर सलोना जो भी दे दिया, लेकिन वो तो मिला नहीं जो आपको चाहिए था उसके थ्रू। जॉय थोड़े दिन को मिला, चला गया। तो फिर यू आर ए पार्टनर इन, हम हमारी ये मापदंड से हम कहते हैं ईविल एंड गुड। प्रकृति के अंदर ये नहीं है, प्रकृति ए मॉरल, उसके अंदर ये भाव नहीं आता है कि, क्योंकि वो सब वही कर रही है कि ये सिंह ने बच्चे को मार डाला, अमरीक के शावक को, भाई बड़ा बुरा किया, पीड़ा दी। प्रकृति के अंदर ये भाव नहीं है, नाइदर नेचर नॉर गॉड इज मॉरल, बट मैन नीड्स टू गो थ्रू मॉरल। वो भी ये बस एक मोमेंट का फेज है, वो भी एक फेज है। मैन ह्यूमन डेवलपमेंट के एक फेज पहले देर इज नो मॉरेलिटी, और जब आप मनुष्यता के परे चले जाते हो देन देर इज अगेन मॉरेलिटी गोज। बट ह्यूमन बींग्स को एक फेज में प्रकृति सिखाती है, पर नेचर कभी एक्ट करती है। आप नेचर और गॉड को मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की चेष्टा करोगे तो कभी नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों ने अंत में बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, मनुष्य के ऊपर, तुम्हारे पाप। अगेन बात वही है कि मुझे किसने बनाया, किसने करवाया, किसने उकसाया, प्रकृति। तो यहाँ ए पार्टनर, ए विटनेस एंड स्टूडेंट ऑफ हर जॉय एंड डोल, ए पार्टनर इन हर ईविल एंड हर गुड, ही हैज कंसेंटेड टू हर पैशनेट वेज, he is driven by her sweet and dreadful force, his sanctioning name initials all her works। ab aapka admission ho gaya, ab good morning sir, good morning teacher, yahi chalega, aapne sanction diya hai। wo school mein bharti hain to ek lambe samay tak ye khel chalta rehta hai। his silence is his signature to her deeds। hum kahenge humne to kahin consent nahi likha, चुप रहे ना, ये बहुत जरूरी चीज है इवन रियल लाइफ में। जो लोग कहते हैं किसी और को ब्लेम करते हैं, बट यू वेर साइलेंट, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। हमारे यहां तो संस्कृत में कहा भी गया है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर आप चुप रहे, इसीलिए तो भीष्म द्रोणाचार्य इन सबका जो मटिया मेट हुए, आप चुप रहे तो आपकी स्वीकृति है। आपने रोक सकते थे, नहीं रोक सकते थे, बोल तो सकते थे, एक जना बचा कौरवों में युयुत्सु, क्योंकि वो बोला भी और क्रॉसओवर भी किया। तो ये स्वीकृति जो होती है, ये साइलेंट प्रकृति की, एक क्षण होता है जब हम चुनाव कर सकते हैं पर हम नहीं करते, तो वो स्वीकृति होती है हमारी। हम बाद में नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई हमारे सामने ऐसा किया या हमसे करवाया गया या क्या करें हम, ऐसा हुआ, हम बह गए, तो आपकी स्वीकृति कहीं ना कहीं है। In the execution of her drama scheme, in her fancies of the moment and its mood, in the march of this obvious ordinary world, क्या लाइन है? पर पहले देखिए क्या कह रहे, enactment of a drama scheme। निश्चित रूप से लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, मैंने बहुत लोगों के जीवन से परिचय होने के कारण ऑब्जर्व किया है। वही व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए वो हीरो है और वही व्यक्ति दूसरे के लिए विलेन है। आप कभी ऑब्जर्व करना, बड़ा आश्चर्य होता है। और ये नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा है। एक पार्ट आपका जो बड़ा भयंकर पार्ट है वो एक व्यक्ति के साथ संबंध में आ, संपर्क में आ रहा है, बाहर आ रहा है। और एक पार्ट जो आपका बहुत अच्छा पार्ट है वो दूसरे के साथ। और अगर दो व्यक्तियों से पूछा जाए ये कौन है, कई बार मेरे पास लोग आके बोलते हैं पता है ये बड़े वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, माने सारी कंप्लेन, लेकिन दूसरों के सामने इनका दूसरा चेहरा सामने आता है तो मैं कहता हूं मुझे मालूम है ये होता है। कोई नई चीज नहीं है। और वो जेन्युइनली, ये नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, द सेम पर्सन, देर आर डिफरेंट साइड्स, और जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतने उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो यहां पर कि वो ड्रामा स्कीम में वही व्यक्ति जो किसी के लिए अपार खुशी का कारण बनता है, वही किसी और के लिए अपार दुख का कारण बनता है। वो नहीं चाहता है कि दुख दे, लेकिन वो कारण बनता है। ये प्रकृति का रचा हुआ ड्रामा। और ये लाइन, इन द मार्च ऑफ दिस ऑब्वियस ऑर्डिनरी वर्ल्ड, आई लव दिस लाइन, ऑब्वियस ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्यों है ये संसार? लोग कहेंगे नहीं नहीं बड़ी बड़ी चीजें हैं, अगले क्षण क्या होगा आपको पता नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाए तो भी मिजरी आपके साथ है, और कुछ नहीं बुढ़ापा, और वो आप कितनी भी एजिंग एंटी एजिंग क्रीम लगा लें आप मन को तसल्ली देने के लिए मैं बहुत जवान हो रहा हूं, मूर्खताएं करें, लेकिन अब ये क्या है। माँ एक जगह कहती है कि ये जो वार्धक्य है, जो डीजेनरेशन होता है उसके साथ, और जो उसके बाद मृत्यु की शैया पर वही व्यक्ति लेटा हुआ है, ऑब्वियस ऑर्डिनरी वर्ल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कितनी उमंग, कितनी अभीप्सा, कितनी चीजों की अगर हम देखें अंदर की लाइफ तो कितनी अलग होती है, परफेक्शन की चाह होती है, लेकिन अगर बाहर का जगत देखें तो ऑब्वियस ऑर्डिनरी वर्ल्ड, वेयर ऑल इज डीप एंड स्ट्रेंज टू द आईज दैट सी एंड नेचर्स कॉमन फॉर्म्स आर मार्वल वेफ्ट्स। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएंगे तब दिखता है कि कैसी रचना है, किसने रचा, एक एक सीपी, एक एक अणु। ये प्रश्न एक मेरे मन को उलझाया करता था कि ये शरीर का डिजेनरेशन क्यों होता है, क्यों? क्योंकि अणुओं से बना है, अणु का तो डिजेनरेशन नहीं होता है अगर अणु का डिजेनरेशन नहीं होता है तो शरीर का डिजेनरेशन क्यों होता है? होता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑफ कोर्स नाउ आई हैव द आंसर, लेकिन वो एक अलग दिशा में जाना होगा। तो ये अगर आप देखें तो स्ट्रेंज, कोई चीज सॉलिड नहीं है लेकिन हर चीज सॉलिड है। हर चीज में अगर आप गहराई में भगवान छिपे हैं, बाहर रावण का चेहरा सामने आ रहा है, तो यहां पर स्ट्रेंज मार्वल वेफ्ट। वेफ्ट किसको कहते हैं? जो आप सिलाई बुनाई करते हैं, नीचे गया ऊपर आया धागा, तो इसीलिए शेरविन ने वर्ड यूज किया है वेफ्ट, वेफ्ट्स। She through his witness sight and motion of might unrolls the material of her cosmic art. धीरे धीरे वो हमको हाथ पकड़ के ले जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप, चल अब अगले क्लासरूम में, अगले क्लासरूम में, उन सब से ले जाके अंत में कहाँ ले जा रही हैं? प्रकृति को पता है अंत में तो उनके स्वामी खड़े हैं पीछे, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू बिहोल्ड। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, और ये भी एक प्रश्न होता है कि विश्व रूप का दर्शन किसी और को क्यों नहीं दिया गया? और श्री कृष्ण भी कहते हैं फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग, मतलब वो वैदिक ऋषियों को भी वो दर्शन नहीं दिया गया है। ही सेज वेरी क्लियरली, पहली बार मैं तुझे दिखा रहा हूं। अब अर्जुन में ऐसा क्या है कि उनको विश्व रूप का दर्शन मिल रहा है जो बड़े बड़े योगियों को, साधुओं को, सन्यासियों को नहीं मिलता है? वहां श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, और शेरविन कहते हैं क्योंकि आप बैटल ऑफ लाइफ से गुजरते हो। जब आप कुरुक्षेत्र से गुजरते हो, भयभीत नहीं होते, भागते नहीं, तब आपके आप अधिकारी होते हो विश्व रूप दर्शन के। साथ में ऑफ कोर्स केवल गुजरना काफी नहीं है, भगवान की शरणागति उन पूरी तरह, देन वन इज फिट फॉर दैट कॉस्मिक विजन। तो प्रकृति ले जा रही है, हर हैपनिंग्स दैट एग्जॉल्ट एंड स्माइट द सोल, हर फोर्स दैट मूव्स, हर पावर्स दैट सेव एंड स्ले, एग्जॉल्ट एंड देन स्माइट। कहाँ उठा देती है, किंग सोलोमन की कहानी कहाँ उसको उस पूरे एरिया में, ये तो अद्भुत है। ये वही अगले क्षण किंग सोलोमन के अंतिम दिन, इतने डिप्रेशन में कि मैंने तो जीवन में, मुझे लगता था ज्ञान है मैंने प्राप्त किया, कुछ भी तो मैंने नहीं पाया। स्ट्रेंज, जब हम सुनते हैं लोगों की कहानी, हाउ दे वेर एग्जॉल्टेड एंड हाउ दे कोलैप्स, ये स्मरण रखना आवश्यक होता है। हर वर्ड, कई लोग हैं जो अपने इस पर अभिमान करते कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, देखिए बाद में डिमेंशिया हो जाता है। आप बच्चे आपको कह रहे हैं क्या, वो क्या हो गया है, आपको याद नहीं रहता है, वो बेचारा क्या करेगा, डिमेंशिया हो गया, नहीं याद रह रहा है। बच्चे चिढ़ के बोल रहे हैं, इरिटेटेड होकर बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक समय मैंने महाब्रिलियंट स्कॉलर के रूप में जाना जा रहा है, प्रकृति का खेल है जो अनुभव देना है आपको। हर फोर्स दैट मूव्स, हर पावर्स दैट सेव एंड स्ले, दोनों ही प्रकृति करती है. हर वर्ड दैट इन दिस साइलेंस स्पीक्स टू हर हार्ट्स, हर साइलेंस दैट ट्रांसेंड्स द समिट वर्ड. ये पूरी रेंज बता रहे हैं कहां तक ले जाएगी आपको. बोल बोल के चुप, और चुप के बाद चुप और साइलेंस और वर्ड के परे, तब अब ये भेद खत्म हो जाता है, तब वर्ड एनरिचेस द साइलेंस. तो ये सब उसकी समिट्स. हर हाइट्स एंड डेप्थ्स टू विच आवर स्पिरिट मूव्स, हर इवेंट्स दैट वीव द टेक्सचर ऑफ आवर लाइव्स, एंड ऑल बाय विच वी फाइंड और लूज आवर सेल्व्स. वही युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं, इंद्रप्रस्थ के राजा बनते हैं. वही युधिष्ठिर जो अगले क्षण कंगाल होकर चले जाते हैं, वही युधिष्ठिर जो वापस आते हैं, युद्ध लड़ते हैं, राजा बनते हैं. अब प्रकृति ने उनके अंदर ही चेंज कर दिया, उनका मन ही नहीं लग रहा है, छोड़ के वो पर्वतों में चले जाते हैं. देखिए खेल कैसा है. तो अद्भुत पंक्तियां हैं ये. एंड थिंग्स, और कई बार, एंड ऑल बाय विच वी फाइंड और लूज अवर सेल्व्स, थिंग्स स्वीट एंड बिटर, मैग्निफिसेंट एंड मीन, थिंग्स टेरेबल एंड ब्यूटिफुल एंड डिवाइन. मतलब ये समग्र दर्शन है. आप ये नहीं कह सकते कि ये तो भगवान का, ये नहीं है. मैग्निफिसेंट, वो देख रहा है पहाड़ की ओर कितना सुंदर. नीचे से एक सांप आया, मीन छोटा सा क्रीचर, डस के कहां गुम हो गया. और ऐसी सी चीजें, मैं तो ऐसी स्टोरीज है मेरे पास कि आश्चर्य होता है. एक तो पेरेंट्स दोनों डॉक्टर, और उनको एक दूसरे हॉस्पिटल जाना है, बेसिकली पिम्स से जिपमर जाना है पार्टी के लिए. तो उनका 4 साल का इकलौता बेटा बाहर खेल रहा है. फिर वो आते हैं तैयार होके, चलो चलो. वो तैयार है, बैठ जाता है, गाड़ी चलती है. तो कहता है कुछ पेन हो रहा है कहीं पाँव में, उसके हल्का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, चीटी उटी काट गई होगी, खेल रहा था बच्चा. फिर वो जब जा रहे हैं, जैसे जैसे उसको वॉमिटिंग और दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है कुछ, और जब उसको ले जाते हैं जिपमर, देखिए वो कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, वो उस हॉस्पिटल से जहाँ वो आराम से फट से ट्रीटमेंट हो जाता है. उसको एक सांप ने काट लिया है जो उसको पता नहीं चला. बाय द टाइम ही रीचेज, ही इज पुट ऑन वेंटिलेटर एंड एवरीथिंग, डजेंट सर्वाइव, ओनली सन. अब आप सोचिए ये क्या अनुभव है, कैसा चेंज है पूरा एटमॉस्फियर का, मूड का, क्लाइमेट का. ये एक कहानी नहीं है. ऑफ कोर्स उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, उनकी और संतान, दे आर वेरी हैप्पी नाउ. आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे ये सब टेरिबल, डिवाइन, सब कुछ प्रकृति के अंदर है. कोई भी चीज ऐसा नहीं कि उसके बाहर है. इवन जिसको हम होस्टाइल और एडवर्स फोर्सेस कहते हैं, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है. निम्न प्रकृति की एकदम गहराई में जाएंगे, पाताल लोक, वहां भी वही है. हर एम्पायर इन द कॉस्मोस सी हैज बिल्ट, ही इज गवर्न बाय हर सटल एंड माइटी लॉज. वो सिखा रही क्या नियम, बड़े भयानक तरीके से ले जा रही एम्पायर. देख एक दिन तो उत्तराधिकारी बनेगा. अब ले गई कहाँ. अब देखिए राम जी को कैसे प्रिपेयर किया था, ऐसे तो किया था ना. जब राजा कहते नहीं नहीं नहीं, हम अपने छोटे हैं बच्चे, इनको मैं आपके साथ भेज दूं, किस लिए ले जा रहे हैं, वहां बड़े असुर हैं, उनसे लड़ना है प्लीज. वो कहते हैं विश्वामित्र बताते नहीं है, पर उनको पता है कि जो इनको बाद में लड़ना है वो तो भयंकर है. अभी तो अब पहले ही युद्ध में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कौन ताड़का. राम जी के आइडियलिज्म सामने आ जाती है, नारी है, नारी पर मैं कैसे असर उठाऊंगा. विश्वामित्र कहते हैं नारी पुरुष नहीं है, तो देख केवल उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है. नहीं नहीं नहीं, हाउ कैन आई. वो हर बार परेशान होते हैं. फिर एक झटके से जब वो एकदम उस मूड में आती कि नाउ शिलो ही शूट्स, उसके बाद उनका एक कहते हैं ना कि खुलता है पूरा अंदर से. प्रकृति के अंदर ही है सारी चीजें. वो ट्रेन करती है ऐसे, आपका कन्फ्रंटेशन ऐसा होगा. तो आपको नियम पता चलते हैं कि ये डेंजरस है, यहाँ पे जाने से ये से तो हम सीखते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कई बार कि बच्चों को हम मेंट वर्बल नॉलेज दे दें, नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ऐसा कि भाई हम बच्चे को ये गलती वो गलती, तो मैं पूछता हूँ आपने ये गलतियाँ की थी कि नहीं की थी? हाँ, दूसरे तरह की होंगी कि अपने सीमाओं में की होंगी, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, बात वही है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रकृति का तरीका है। हिज बीइंग, हिज कॉन्शियसनेस इज ए बेब अपॉन हर नीज। हम सोचते हैं कि हम बहुत महान है, प्रकृति एक क्षण में बता देती है। महान से महान योद्धा थोड़ा सा बुखार होता है, देखिए कैसे बिस्तर के ऊपर चला आता है। बेब अपॉन हर नीज। और सच में केवल ब्रह्मांड को देखें तो मुझे लगता है ये देख के विनम्रता आती है और आश्चर्य आता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित देनम, मनुष्य जो समझता है मैं लुक एट दिस यूनिवर्स, क्या टीमिंग विद स्टार्स एंड गैलेक्सीज, किस स्पीड से जा रहे हैं, एक किसकी में गति पढ़ा था, एक कॉमेट या कुछ, उसकी क्या स्पीड, एक सेकेंड में उतना कवर करता है वो कॉमेट डिस्टेंस जितना आपको यहां से महाबलीपुरम, 1 सेकेंड, सम 54 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये तो एक छोटा सा वो पत्थर है जो स्पेस में, पृथ्वी की स्पीड आप देखिए कैसे घूम रही है। सो हर बीइंग ए फील्ड ऑफ हर वास्ट एक्सपेरिमेंट, हर एंडलेस स्पेस इज द प्लेग्राउंड ऑफ हिज थॉट्स। She binds to knowledge of the shapes of time and the creative error of limiting mind and chance that wears the rigid face of fate and her sport of death and pain and nescience. अब देखिए एक एक लाइन कितनी अद्भुत है। His being a field of her vast experiment. आजकल ये कुछ लोगों के अंदर ये thought आ गया है कि क्या हम जैसे होता है टीवी में कोई हो रहा हो, आर वी इन ए सिमुलेशन? कि ऐसा तो नहीं कि एक कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा, और देखा जाए तो चल रहा है, सुपरमैन निकलेगा एक्सपेरिमेंट से। उसी प्रकार से आप देखिए पशुओं के अंदर एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर से कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो अब हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो एक अलग बात है, प्रकृति तो क्वेश्चन नहीं करती हमसे कि मेरा काम तुम्हें कैसा लग रहा है। हमें अच्छा भी लगता है उसकी बहुत सारी चीजें, पर दूसरा भी एस्पेक्ट है। अब देखिए हर एंडलेस स्पेस इज द प्लेग्राउंड ऑफ हिज थॉट्स। क्या होगा गैलेक्सी के परे, कभी कभी केवल ये मेडिटेट करना ना इतना अद्भुत होता है, हमारा मिल्की वे इसके परे क्या होगा, वहां क्या होगा, कैसा होगा, अद्भुत होगा। तो ये बियॉन्ड वो प्लेग्राउंड ऑफ हिज थॉट्स। शी बाइंड्स टू नॉलेज ऑफ द शेप्स ऑफ टाइम, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। माँ कहती है इट्स ए साइंस ऑफ अपीयरेंसेस, ये तो रियल ज्ञान है ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ। और आगे की लाइन देखिए बड़ी अद्भुत है। एंड द क्रिएटिव एरर ऑफ लिमिटिंग माइंड, चूंकि मन सीमित है इसलिए वो जान नहीं पाता, वो जानने की चेष्टा में भूल करता है, वही भूल उसके लिए एक नए ज्ञान का द्वार खोलती है। जैसे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने वो पेट्री डिश भूल से छोड़ दी खुली, अगले दिन उन्होंने देखा कि ये तो वो बैक्टीरिया की पेट्री डिश स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक कोई फफूंदी जैसा मोल्ड आ गया है और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी तो खत्म हो गई है। तो उससे उस गलती से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक है। क्रिएटिव एरर, भूल से छोड़ दिया था उन्होंने, और उस भूल के कारण एक पूरा एंटीबायोटिक युग का प्रारंभ हुआ। पहली 1960 सेम देखिए सुपरमेंटली क्रिएटिव एरर, कितनी ऐसी चीजें हैं जहां भूल से। बाय द वे, यहां आने की कई लोगों की ऐसी कहानी है, बाय द वे प्रकृति का खेल है लिमिटिंग माइंड। एंड चांस दैट वेयर द रिजिड फेस ऑफ फेट, चांस बोल के कोई चीज नहीं होती, हमको लगता है क्योंकि उसके पीछे जो चीजें हम नहीं जानते। दैट वेयर द रिजिड फेस ऑफ फेट, अचानक बाई चांस ऐसी चीज हो जाती है और हमको लगता है अरे ये क्या हो गया, काश ये नहीं होता। जिंदगी में कभी ये सोचने लगे तो काश 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 से पूरी आकाश भर जाएगा। काश ऐसा होता, काश वैसा नहीं होता। तो वहां पे आप देखते हैं कि वो रिजिड फेस ऑफ फेट, चांस की एक इवेंट। एंड हर स्पोर्ट ऑफ डेथ एंड पेन एंड नेसियंस, ये पंक्तियां टॉनिक हैं, ये हमको डरा नहीं रही हैं, टॉनिक है। अचानक खेलते खेलते हमारे सामने खड़ा कौन हो जाता है? डेथ। बोलती खेलोगे हमारे साथ? चलिए दो दो हाथ आपके साथ भी करते हैं। ये होनी चाहिए स्पिरिट, ये ले जा रही है उसी स्पिरिट की तरफ। ये कहते हैं ना अर्जुन विराट युद्ध के समय, अरे चल तू, अरे मैं इनके सामने कहाँ युद्ध करूंगा, देखो मैं मर जाऊं। कहते कोई बात नहीं, ये क्षत्रिय है तो। तो इवन वो डेथ को भी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में, वो भी उससे भी आपको खेलना पड़ता है। His changed and struggling immortality, बार बार देह बदलना, बदल के इमोर्टल तत्व को आना पड़ता है। His soul is a subtle atom in a mass, जैसे एक बहुत बड़ी हीप में एक छोटा सा अणु होता है, वैसे कहीं आत्मा का कण कहीं छिपा है, मिलता नहीं। बड़े अंधकार में एक छोटा सा कण अगर दब के छिपा हो तो वो धीरे धीरे जब बड़ी हो, डेवलप करती है, अपना ही प्रकाश में वो आकर्षित करती है। हिज सब्सटेंस मटेरियल फॉर हर वर्क्स, हिज स्पिरिट सर्वाइव्स एमिड द डेथ ऑफ थिंग्स, ही क्लाइम्स टू इटर्निटी थ्रू बीइंग्स गैप्स, ही इज कैरीड बाय हर फ्रॉम नाइट टू डेथलेस लाइट, क्लाइम्स टू इटर्निटी थ्रू बीइंग्स गैप, स्टेप बाय स्टेप ले जाती है वो क्लास में। और ये प्रकृति बड़े डिटेल में परफेक्शन से ले जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि वहां ऐसा वाला एग्जामिनेशन नहीं होता कि 50% मार्क आ गए, वो आपको जानना ही है सब कुछ। हम लोग जो यहां पहुंचे कितने जन्म पीछे छोड़ चुके हैं, हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तभी तो वी शुड बी हैप्पी कि अब यहां तक आ गए, अब तो कुछ नहीं बचा। एस्पिरेशन आ गई तो दो तीन जन्म, जनरली इवन वन लाइफ, हम तो भाई ये मान के चलते हैं। अब यहाँ आ गए, जब इतने दूर ले आए हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि इतनी कट गई, थोड़ी और कट जाएगी। उनका बुढ़ापा डील करने का मेथड बहुत एक्सीलेंट था, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं। वो कहते अरे राम जी ने इतनी हमारी काट दी, आगे भी काट लेंगे, ये मेरे दिमाग में स्टक कर गया है। नया नया डॉक्टर में कहता था ये चेक, अरे बेटा राम जी ने इतनी हमारा कर दिया, आगे भी कर देंगे। और वैसे वही हुआ, देखा मूर्ख तो मैं ही था दोस्त। लेकिन आप देखिए, आप प्रयास करते रहते हो, बुढ़ापा फिर भी रहेगा, डिजीज रहेगी। हाँ कुछ डॉक्टरों का घर परिवार सुधरेगा, वो भी आवश्यक है, इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टरों के पास जाना चाहिए उनके भले के लिए, डॉक्टरों के भले के लिए। पंडितों के पास जाना चाहिए उनके भले के लिए, वकीलों के पास जाना चाहिए उनके भले के लिए। लेकिन आपका भला तो आपके अंदर है, आप सोच रहे हो इससे आपका भला हो रहा है तो फूलिंग वन सेल्फ। तो धीरे धीरे वो अपने आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। दिस ग्रैंड सरेंडर इज हिज फ्री विल्स गिफ्ट। मनुष्य ने जो सोल है वो प्रारंभ में कह देती है, अब भगवान ने तो डाला है ना, वो तो ओरिजिनल मेमोरी वही है, तो कहती ठीक है। अंत में आप क्या करते हो? रिजाइन। अब क्या करोगे? ले जा रही है वो। His pure transcendent force submits to her. हालांकि वो जो आत्म तत्व है वो प्योर ट्रांसेंडेंट, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, वायु पुत्र, पवन पुत्र हैं हनुमान, और वायु पुत्र भीम हैं। यू हैव टू गो थ्रू दैट होल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। वैसे ही हम लोग ट्रांसेंडेंट के की संतान हैं। In the mystery of her cosmic ignorance, in the insoluble riddle of her play. इसलिए सबने कहा ना, कह नानक यह खेल कठिन है, को गुरमुख जाना। Riddle. Our life is a paradox with God for key. कई बार लोग कहते मेरे लाइफ में सब उल्टा पुल्टा क्यों है? मैंने कहा इसका मतलब भगवान कह रहा है असली चाबी को ढूंढ लो, बिना भगवान की चाबी मतलब सॉल्व नहीं कर सकते गुत्थी को। तो रिडिल, जीवन एक रिडिल, रिडिल के रूप में। और वो रिडिल इतनी जटिल होती जाती है क्योंकि जब तक आप उस रिडिल का रियल सॉल्यूशन पे नहीं जाओगे, वो ऐसा नहीं है कि नेचर कहती है अच्छा ठीक है दया, दया नहीं है वो, दया करने से तो प्रॉब्लम है। वो कहती अच्छा तो भागना चाह रहा है, ओके आई विल इंक्रीज द रिडल, तो एस्केप नहीं कर सकता, यू हैव टू कन्फ्रंट इट। अंत में आप इसी पर कि भगवान के अलावा कोई चारा नहीं है, तो मनुष्य तब तक बेचारा है जब तक उसने अपना रियल चारा नहीं ढूंढ लिया, बाकी सब अनाथ और बेचारी हैं। ए क्रीचर मेड ऑफ पेरिशेबल स्टफ इन द पैटर्न शी हैज सेट फॉर हिम ही मूव्स। को बड़ा लग रहा है कि मैं फ्री हूं, आपको कहां पटका है, कौन से जगह पर, वही आपको लग रहा है ये मेरे अपने हैं, सब वो पैटर्न उसने सेट कर दिया है, हैबिट्स उसके ग्रूव में घूम रहा है व्यक्ति। ही थिंक्स विद हर थॉट्स विद हर ट्रबल हिज बूजम हीव्स। तो ये फ्री थॉट वगैरह, ये दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं कि ये नेपाल में अनरेस्ट, ये अनरेस्ट कौन करवा रहा है, कोई अमेरिका चाइना, अरे भाई प्रकृति करवा रही है, ये खेल है, बड़ा भयंकर खेल है। वो तो इंस्ट्रूमेंट बना लेती है ना, किसी राष्ट्र को इंस्ट्रूमेंट बना लेगी, व्यक्तियों को इंस्ट्रूमेंट बना लेगी डायरेक्टली, क्योंकि उसको जो करना है उसके थ्रू ले जाएगी। ही सीम्स द थिंग दैट शी वुड हैव हिम सीम। अब ये देखिए, आप तिब्बत का देखिए, तिब्बत की अगर पढ़ेंगे कैसे तिब्बत अधीन हुआ चीन के, बड़े पावरफुल किंग्स थे और नोबल किंग्स थे, अगर आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हमारे भारतवर्ष के जैसे नोबल आर्य राजा होते थे वैसे। लेकिन वहां पे बुद्धिज्म आ जाता है, धीरे धीरे वही पंचशील अहिंसा करते करते वो एक पूरी तरह चीन का झांसा, फिर ब्रिटिशर्स, ये सब। अब उनको ये सीखना है दैट वी हैव टू लर्न टू राइज एंड फाइट। ये आप लेसन प्रकृति सिखाएगी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, इट डजेंट मैटर, प्रकृति के लिए 300-400 साल कुछ भी नहीं है, वो ले जाएगी आपको उस रोड से। तो दिस इज हाउ प्रकृति ऐसे सिखाती है हमें। ही इज वॉट एवर हर आर्टिस्ट विल कैन मेक। ऑल दो शी, अब आ रही है कि इसकी सीक्रेट, कि वो वास्तव में शिक्षिका है। लास्ट में होता है ना, आप टीचर को कहते हो आपने हमको डंडे मारे, आप तो नहीं होते, आप तो टीचर डरते हैं बच्चे से, फ्रीडम फ्रीडम कहीं कुछ ना हो। पहले टीचर बोलते भी थे, कभी कभी लग भी जाता था बाएं दाएं हाथ का, और ये भी होता था। बाद में बच्चे कहते थे थैंक यू टीचर, आपने हमको करेक्ट करके रखा, इसलिए आज हम मैथ सीख गए। टीचर भी स्माइल करती है। तो लेकिन नाउ टीचर डरे होते हैं, लॉ इतनी स्ट्रांग है, पोस्को एक्ट ना लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो दे आर ऑल स्केयर्ड। माता पिता भी डरे हुए हैं कि भाई बच्चे से कुछ, तो ये एक नया मोड है। ये नहीं कि ये भी प्रकृति का खेल है, क्यों, क्योंकि उसने एक्सेलरेटेड मोड में डाल दिया है। अब उसने क्लासरूम से सारे टीचर कम से कम आपको कुछ तो रेगुलेटेड था, नथिंग इज रेगुलेटेड। अब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का द्वार है, एंडलेस एक्सपेरिमेंट। आप जल्दी सीखोगे या जल्दी गिरोगे, जल्दी गिरोगे जल्दी सीखोगे, ये प्रोसेस चल रही है। इट इज इवोल्यूशन नेक्स्ट, तो उसमें एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन का मोड आ गया है। तो अभी हमको ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वी विल सी कि दिस इज दी एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन। कई सारी वृत्तियां निकल के आई, लोग कहते हैं ये क्या है, पहले नहीं थी। अब आप अपने ही काल में देख लेंगे, ये वृत्तियां जो निकली थी उनका शमन भी हो रहा है, लोग उससे उससे उब गए हैं। वही वृत्तियां एक समय था जब पोर्नोग्राफी आई थी बड़े, अब आप धीरे धीरे देखोगे जो उस जनरेशन के लोग थे वो दे आर सिक एंड टायर्ड, उनके अंदर सेक्सुअल प्रवृत्ति खत्म हो गई, एक्सेलरेटेड मोड। पहले क्या होता था, वो छुपी रहती थी, दबी रहती थी, वो गानों में एक्सप्रेस कर रही है, रोमांटिक उसमें एक्सप्रेस, फास्ट फॉरवर्ड इवोल्यूशन। अब प्रकृति का तरीका है उसके, आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि हमारे हिसाब से चलने दो। अब यहां पर वो आ रहा है, ऑल्दो शी ड्राइव्स हिम ऑन हर फैंसीज रोड। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां मर्जी ले जा रही है, इसके अंदर कोई लॉजिक भी है। At play with him as with her child or slave, to freedom and the eternal's mastery and immortality stand above the world, she moves her seeming puppet of an hour. ले कहां जा रही है, कॉन्शियस इमोर्टैलिटी की तरफ। उसके लिए बार बार मृत्यु आती है सामने, फिर एक टाइम आता है, कई लोग करते ना शमशान साधना मृत्यु से, वो भय से छुटकारा, देन यू आर ओपन टू द हायर, बट यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट नॉनसेंस। एक टाइम आता है जब आप कहते हैं यार क्या चीज है जिसकी डर को लेकर के हम ट्रेडमिल किए जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं यहां जा रहे हैं, उससे मच इजियर कि आप मृत्यु का भय ही खत्म हो जाए। एक टाइम आता है जब वो ले जाती है, उस लेवल पर आपको ले जाएगी जहां आपके अंदर से जब डर खत्म हो जाएगा मृत्यु का, तो बस द्वार तो बाकी सारे खुल जाते हैं, क्योंकि उसी के पीछे तो अमृत तत्व का चेहरा छिपा है। तो ले वो जा रही है आपको फ्रीडम की तरफ, ट्रू फ्रीडम, इटर्नल्स मास्टरी, वो वाली मास्टरी नहीं जिसको हमको लगता है कि मास्टरी है, वो ले जा रही है। इवन इन हिज मॉर्टल सेशन इन बॉडीज हाउस, क्या आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, प्रकृति करी ओके एक क्लास ओवर, घंटा बचा अभी मॉर्टल सेशन, क्या था वो, प्रकृति आपकी क्लास ले रही थी। ज्यादातर तो ये होता है ना, एक जिंदगी से एक सबक सीखते हैं, कई बार वो भी नहीं सीखते, अरे कुछ तो सीख लो कि तुमने सारी जिंदगी जो किया वो वेस्ट किया, वो भी नहीं सीखते। तो प्रकृति कहती ओके योर टाइम इज अप, नाउ नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट। तो मॉर्टल सेशन वर्ड देखिए, इन इवन इन हिज मॉर्टल सेशन इन बॉडीज हाउस, एन एमलेस ट्रेवलर बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इफीमरल ड्रीमिंग ऑफ इमोर्टैलिटी टू रेन शी स्पर्स हिम, ही टेक्स अप हर पावर्स, ही हैज हार्नेस्ड हर टू द योग ऑफ हर ओन लॉ। फिर करते करते घसीटते वो अंत में क्या सिखा रही है, मुझे तो पढ़ ले कम से कम। बिजली चमक रही है, लोग घर के अंदर डरे डरे। फिर एक देखिए, शेरविंद के आने के पहले एक विज्ञान का युग आया ना, तो युग इसका प्रतीक था, बाहर की प्रकृति को व्यक्ति ने कहा हम डरते क्यों, ये है क्या। तो माइकल फैराडे एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर किया भाई ये लाइटनिंग जो है जिससे हम डर रहे हैं, जिसमें हम पूजा करें, इसके पीछे तो इसको हम हार्नेस कर सकते हैं, ये तो हमारे घोड़ागाड़ी चला सकती है, हमारे घर में प्रकाश दे सकती है, सारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ। ऐसे ही बहुत सारी चीजें तो ले जा रही, खुद ही दे देगी, जब आप तैयार होंगे तो खुद ऐसा कुछ बना देगी कि आपके गोद में वो ज्ञान आ जाएगा। तो देखिए इस शेरविंद का युग आने के पहले कैसी तैयारी शुरू हो गई थी। ही हैज हार्नेस्ड हर, हु इज ही, द सेम सोल जो उसकी स्लेव पपेट की तरह अब क्या सीखती है, जड़ प्रकृति को बांधना सीखती है। ये हो गया ना पिछला 100 साल, अब वो क्या सीखेगा मनुष्य, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रकृति को साधना, ये युग उसी का है। इसीलिए दिस दी 100 ईयर्स इज ए एज ऑफ योगा, स्पिरिचुअलिटी, ये प्रोमिनेंट होती जाएंगी, क्योंकि वो फिजिकल नेचर को उसने कर लिया। आप देख रहे हैं अभी एप्पल में भी आपका मजा नहीं आ रहा, मतलब एप्पल मतलब वो कंपनी, वो खुद कह रहे हैं सेल वेल को, क्योंकि आप कितने उसमें मॉडिफिकेशन करोगे, 5G अब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि 6G कब आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस अब इनर मास्टरी की ओर जा रही है। तो वे लोग जो इसकी दुकान चलाते हैं स्पिरिचुअल इसकी, उनकी दुकान चल रही है, क्योंकि अब उस तरफ व्यक्ति जा रहा है, ये नहीं कि दुकान चलानी चाहिए, बट दिस इज द ट्रेंड, इट्स ट्रेंडिंग नाउ। तो यहां पर वो ले जाती है, हीज फेस ऑफ ह्यूमन थॉट पुट्स ऑन ए क्राउन। ह्यूमन थॉट क्या है, सीमाओं में अब पुट्स ऑन ए क्राउन, वन बिकम्स ए फिलोसोफर, ए थिंकर, शास्त्रों का ज्ञाता, ज्ञान की ओर। वही प्रकृति आपको एक टाइम के बाद, फिर आपके लिए वो सोचना मुश्किल हो जाता है, वो लगता है क्या बेकार की बातें, फिजूल की बातें लोग कर रहे हैं, क्या आज दिल्ली का मौसम कैसा है, पौंडीचेरी में गर्मी है सर्दी है, हमारे घर में ये चल रहा है, यू फील सो स्टूपिड। पर आपको अब बैठे हो अगर ऐसी कंपनी में, तो आप थोड़ी देर बाद रेस्टलेस हो जाओगे, अगर आप समझदार हो, फिर आप एक्सक्यूज बनाओगे, कुछ नहीं तो अपना फोन ही निकाल लोगे, अच्छा मैं आ रहा हूं सॉरी मेडिकल इमरजेंसी। बेसिकली आप बोर हो रहे हो, आपके लिए वो अब एकदम अस्वाभाविक हो गया है, लेकिन लोगों को रस आता है, घंटों वही बात करते हो उनसे, अगर आप बोलोगे कुछ थोड़ी देर हम लोग बैठ के लाइव डिवाइन पढ़ ले, अच्छा चलो भाई खाने का टाइम हो गया लेट्स लेकिन वही प्रकृति कुछ लोगों को तैयार करके उनको भी तैयार करेगी, अभी उनका कोर्स चल रहा है, लेकिन आप मिक्स हो गए उसमें तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उससे क्लियर कर चुके हो. His face of human thought puts on a crown, held in her leash, bound to her veiled caprice. He studies her ways, if so he may prevail. जैसे एक कुत्ता जो मालिक के साथ बंधा है, वो वास्तव में मालिक के सारे तौर तरीके सीख रहा है. उसको पता चल गया है कि मालिक कब सोता है, कब में. आपको लग रहा है कि वो आपका दास है. He learning. So प्रकृति की leash में हम हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं. और वो हिंट भी देती है बीच बीच में, जिससे कि हमको पता चले कि क्या पसंद है ना पसंद है. देखिए यहाँ कुत्ते कितने स्मार्ट हो गए. आप उनको यहाँ आश्रम के पास, उनको आप कोई ऑर्डरी चीज़ देके नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आके उनको बड़ा अच्छा. तो एक बार हुआ भी, किसी ने कुछ डाला दया करके, तो कुत्ते ने रिफ्यूज कर दिया. तो उस व्यक्ति को बताना पड़ा कि यहाँ के कुत्ते नहीं खाएंगे. उसको पता है मेरा मालिक आएगा. वो देगा असली चीज. तो वो बाउंड है लेकिन सिखा रही है. ही स्टडीज हर वेज, इफ सो ही में प्रिवेल. इवन फॉर एन आवर एंड द वर्क एंड इवन फॉर एन आवर एंड शी वर्क आउट हिज विल. ही मेक्स ऑफ हर हिज मोमेंट पैशंस सर्फ. एक एक घंटे के लिए यदि मैं कुंभक द्वारा सांस रोकना सीख लूं, और उस मोमेंट, ये भी प्रकृति का खेल है, ये कोई डिवाइन चीज नहीं है, बट एक अलग लेवल का खेल है. मैंने श्वास रोक ली, प्रकृति ने आपको सिखा दिया कि डेथ जो हम समझते हैं वो श्वास के रोकने की चीज नहीं है. ये भी प्रकृति ले जाती है उस खेल से भी. आप बड़े खुश हो रहे हो, एटलीस्ट मोमेंटरीली आपको कुछ, उसने डोर खोल दिया. तो ये सारे उसके खेल हैं. भगवान का खेल तो बाद में शुरू होता है, वो एक अलग चीज है. टू ओबे शी फेंस. ऐसा लगता है कि आपने प्रकृति को वश में कर लिया. ऐसे योगी है ना, जो वही पॉल ब्रंटन ने लिखी है किताब में, सांस रोक के इतनी देर वश में कर लिया. अच्छा ठीक है, अब आप कोई उनको बोले अब आप नाक पे परमानेंटली बंद कर लीजिए, यू कैन नॉट. ऐसा लगता है कि हमने एयर कंडीशनिंग कर ली, प्रकृति का को अपना दास बना लिया. लेकिन क्या हो रहा है, वो अब भी हमको अपना दास बना रही है. इसलिए श्रीविंद कहते हैं कोई भी भगवान की उपलब्धि जो स्पेशल प्रोसेसेस पर डिपेंड करती है, इट इज स्टिल अ बॉन्डेज. क्योंकि आप वो टेक्निक पर डिपेंड कर रहे हैं कि इतनी देर बैठ के मैं प्राणायाम करूंगा, इतनी देर बैठ के मैं ध्यान करूंगा तो जुड़ूंगा, जो आपके लिए सहज स्वाभाविक होना चाहिए. तो यहां पर बता रहे हैं, ही मेक्स ऑफ हर हिज मोमेंट पैशन सर्फ. सर्फ माने सर्वेंट. ऐसा लगता है कि प्रकृति को उसने अपना सर्वेंट बना लिया. टू ओबे शी फेंस. वो भी ऐसे कि हाँ, प्रकृति को बांध लिया. ऐसे ही लगा था ना वो रावण को, कि सारे देवताओं को मैंने बांध लिया. उसको पता नहीं था कि शनि देवता को ले आया वो वहीं पर, और सबसे पहले हनुमान जी उन्हीं को छुड़ाएंगे, और सबसे पहले उनकी दृष्टि लंका पर पड़ेगी, और फिर उसके बाद विनाश शुरू हो जाएगा. टू ओबे शी फेंस. शी फॉलोज हर क्रीचर्स लीड. तुझे लग रहा है कि तू मुझे बांध करके एयर कंडीशनिंग कर लेगा, हवा में उड़ाएगा, चल ठीक है, मैं देती हूं अपनी ये नॉलेज तुझे दे रही हूं. फॉर हिम शी वॉज मेड लिव्स ओनली फॉर हिज यूज. ऐसा लगता है कि अरे हमारे लिए, ये मेरी दास बन गई है. अंतिम चार पंक्तियां, बट कॉनकरिंग हर देन इज ही मोस्ट हर स्लेव. He is her dependent, all his means are hers, nothing without her he can, she rules him still. ये प्रॉब्लम है AI की. एक स्टेज आएगी कई लोगों में जिनके लिए सोचना इम्पॉसिबल हो जाएगा बिना AI टूल के. ये कोई अच्छी चीज नहीं है. जैसे अभी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, आप कैलकुलेटर लेकर के. अब पहले तो ये समस्या नहीं होती थी, पहाड़े याद हो जाते थे, फट से आप करते थे. नाउ यू कैन नॉट, यू हैव लॉस्ट दैट फैकल्टी. अब धीरे धीरे वो चैट जीपीटी है ना, जो भी है, वो आपको ऐसे लिख रहा है. अब धीरे धीरे वो शेरविंद को भी पढ़ा रहा है, शेरविंद की लिखने का इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है. भाई कुछ तो छोड़ दो अपने लिए, कम से कम पढ़ने का जॉय तो रखो. वही ढूंढ के दे रहा है. दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट ऑल दिस. दीज एप्स आर ओके फॉर क्विक रेफरेंस, फॉर रिसर्च, बट यू रीड सिस्टमैटिकली, उसका जॉय अलग है. शुरू से आखिर तक कहीं से डिसकनेक्टेड, तो धीरे धीरे हमारी वो फैकल्टी, ये भी प्रकृति का खेल है, क्योंकि कई लोग, बहुत सारी जो, ये सच है कि पॉपुलेशन वेदर वी लाइक इट और नॉट इट इज गोइंग टू कोलैप्स, इसका प्रेडिक्शन कई लोगों ने किया है, कई कारणों से अलग अलग कारण बनेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ए बिग थिंग, 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट, और उसका अभी भी लोग सोल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जुडिशियसली करें, ये नहीं देख पा रहे कि नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करें, अभी भी यही बात हो रही है कि हम नई एंटीबायोटिक्स लाएं, जुडिशियस यूज करें, यू हैव नॉट टच्ड द रियल प्रॉब्लम। ये अंतिम लाइन यहीं रुकेंगे। टू ओबे शी फेंस, शी फॉलोज हर क्रीचर्स लीड, फॉर हिम शी वॉज मेड, लिव्स ओनली फॉर हिज यूज, बट कॉन्करिंग हर देन इज ही मोस्ट हर स्लेव, ही इज हर डिपेंडेंट, ऑल हिज मीन्स आर हर्स, नथिंग विदाउट हर ही कैन कैन, शी रूल्स हिम स्टिल, एट लास्ट ही वेक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ। ये सारे स्कूल से करने के बाद तब आप कहते हो ये तो हम अच्छी दास्ता हो गई है हमारी। अब खुद ही देखो, हम लोग बड़ी लकी जनरेशन है जिन्होंने ये ट्रांजिशन देखा है, एटलीस्ट हम लोग वी हैव सीन द ट्रांजिशन, जब हम वी हैड टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब वो चीज, वो रेस्टलेस स्विगी, वो जो बनाने का चाह, अभी एडवर्टाइजमेंट आने लगा ना, कुछ बच गया है, वो नूडल बनाती ना मम्मी उसके साथ, रुके तो कहते कुछ बच गया है ना, कहते नहीं आपने वो मसाला डाला, फिर बोलती कुछ बच गया है, तो वो एक्चुअली जो बहू है वो काम कर रही है कॉरपोरेट सेक्टर में, फिर वो कहते कुछ बच गया है, बहू कुछ बचा है क्या, तो वो आती है, देन इट क्लोजेज वेरी ब्यूटिफुली, 2 मिनट अपनों का साथ क्या बच गया है, यू हैव टू पुट दैट लव दैट टुगेदरनेस, वो बच गया है, आपने सब डाल दिया लेकिन कुछ बच गया है, तो वो चीज तो स्विगी में नहीं मिलती, बट वी हैव टू लर्न इट। लोग कई बार बोलते हैं ना कि इतनी बीमारियां क्यों आ रही है, एक कारण ये भी है, वो जो एक नेचुरल कोर्स में जो कुकिंग, उसमें जो एक जॉय और उसमें जो एक लव, नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड, बट मैनकाइंड हैज टू गो थ्रू इट। ये पढ़ने के बाद कोई चिंता नहीं करनी है स्विगी वाले इधर चले आओ, डाइनिंग रूम वाले इधर जय माँ जय माँ जय माँ, जो माँ को याद करके बनाए वो प्रसाद है, जय माँ।